ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के कार्यकाल पर विधानसभा में श्वेत पत्र लाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध। और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के कार्यकाल पर विधानसभा में श्वेत पत्र लाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान ये घोषणा की। इससे पहले श्रीमती रेखा गुप्ता ने सदन में निगम के बारे में सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये सीएजी की तीसरी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में लेखा परीक्षण जारी होने के कारण आर्थिक सर्वेक्षण शीघ्र ही पेश किया जाएगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा के साथ खीर समारोह में भाग लिया। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
दिल्ली के इतिहास में इस प्रकार की सेरेमनी, खीर सेरेमनी के माध्यम से दिल्ली की जनता के वो सभी वर्ग जो इस बजट से जुड़े रहते हैं, बजट कल सदन पटल पे प्रस्तुत किया जाएगा और इस बजट में ये सरकार का नहीं दिल्ली की जनता का बजट है। दिल्ली के हित में और विकसित दिल्ली का नया विजन अब यहाँ से शुरू होगा।
सीएजी रिपोर्ट पर आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भाजपा विधायक हरीश खुराना ने कहा कि इस रिपोर्ट से ये स्पष्ट होता है कि पिछली सरकार में कैसे वित्तीय अनियमितताएं बरती जा रही थी। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी तब डीटीसी पर 3000 करोड़ रुपए का घाटा था, लेकिन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ये घाटा बढ़कर 8000 करोड़ रुपए को पार कर गया है।
मानना यह कि ये फाइनेंशियल इरेगुलर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का जीता जागता उदाहरण है। जिस प्रकार से डीटीसी बसेस को घाटा बढ़ता गया और क्लस्टर बसेस को फायदा पहुंचाया गया तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर इंगित कर रहा। 3000 करोड़ का घाटा था जब ये लोग आए थे डीटीसी के अंदर। 2022 की रिपोर्ट कहती है 8000 करोड़ से ऊपर का घाटा हो गया और जो आरटीआई आई 11000 करोड़ का घाटा इंगित कर रही है।
वहीं प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने राष्ट्रीय राजधानी के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें बिजली आपूर्ति, अस्पतालों में उपलब्ध एम्बुलेंस, वेंटिलेटर और आईसीयू वार्ड की उपलब्धता शामिल रहे। इसके अलावा विपक्षी सदस्यों ने महिला समृद्धि योजना की पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। इस मुद्दे पर चर्चा की भी मांग की गई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए। 8वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख तक जारी रहेगा। दिल्ली विधानसभा में कल मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। 27 वर्षों बाद सत्ता में लौटी भाजपा सरकार का ये पहला बजट है। बजट से पहले आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि कल पेश होने वाला ये बजट शहर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि बजट में परिवहन और स्वास्थ्य क्षेत्र पर आमूलचूल बदलाव देखने को मिलेंगे।
मैं यही दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट में अनुचित जो हमने विश्वास जनता को दिलाया था तो परिवर्तन मिलेगा। इस बजट के बाद और परिवर्तन दिन पर दिन बदलते जाएंगे। 100 दिन के अंदर जो हमने विश्वास जताया था कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट और हेल्थ के नाम पे बदलती भी दिखेगी।
दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली सचिवालय में न्यायमूर्ति उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि श्री कुमार के नेतृत्व में डीईआरसी शहर में बिजली आपूर्ति का उचित विनियमन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम आ गया है, इसलिए शहर में बिजली संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी बिजली वितरण कंपनियों से बेहतर तालमेल बनाकर शहर के लोगों के हित में काम करने का आह्वान किया। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने शहरवासियों को लगभग 21,000 करोड़ रुपए के रेगुलेटरी एसेट्स के कर्जे में दबा दिया है। उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी अकुशलता के कारण आज शहरवासियों पर इतना बड़ा भार है। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली में बिजली के दामों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और शहर के लोगों पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शहर के प्राचीन नीली छतरी वाले मंदिर की सुरक्षा सर्वोपरि है। श्री वर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंदिर की एक भी ईंट नहीं हटेगी और यदि कोई संरचनात्मक क्षति हुई है तो उसे दोबारा बनवाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे मामले का राजनीतिकरण करें।
एक आस्था का केंद्र है, अभी आज से नहीं है, 500-600 साल पुराना है मंदिर। बिल्कुल आप इस बात से बिल्कुल चिंता मत हो जाइए, वही दोबारा होने आएगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को तत्काल प्रभाव से न्यायिक कार्य से हटा दिया है। आज उच्च न्यायालय की ओर से जारी एक नोटिस में यह निर्णय लिया गया। न्यायालय का ये आदेश उनके आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद आया है। उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर एक अन्य नोटिस में कहा गया कि न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच 3 के कोर्ट मास्टर अब आज से पहले सूचीबद्ध मामलों के लिए तारीखें तय करेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इस तरह की कुप्रथा समाप्त करने का आह्वान किया। श्री धनखड़ ने आज संसद भवन में इस मुद्दे पर सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। सभापति ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा समिति के गठन के कार्य पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समिति के परिणाम की प्रतीक्षा करना उचित होगा क्योंकि इससे समिति को विचार के लिए संपूर्ण सामग्री प्राप्त हो सकेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में विश्व क्षय रोग दिवस 2025 के अवसर पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी के 10,000 आइसोलेट्स की जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी होने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य जीनोमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर टीबी में दवा प्रतिरोध से निपटना है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक टीबी को खत्म करना और इसके प्रसार को 90% तक कम करना है।
उन्होंने ये तय किया कि 80% वो मॉर्टेलिटी कम करने में कामयाब रहे, ये उनका प्रयास रहेगा सन 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के, और 90% इसकी मॉर्बिडिटी यानी कि प्रेवलेंस। और हमें इस बात की खुशी भी है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम पर डाल करके ये तय किया कि हम 2025 के भीतर ही टीबी मुक्त भारत कायम करने में सफल हो पाएंगे।
दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पांचवें दिन आज पावर लिफ्टिंग में दो और नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। पंजाब की सीमा रानी ने महिलाओं की एलीट 61 किलो में 97 किलो का वजन उठाकर रिकॉर्ड बनाया। बिहार के झंडू कुमार ने पुरुषों की एलीट 72 किलो में 206 किलो वजन उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। झंडू कुमार ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि ये अनुभव बेहद खास है और वे आगामी खेलों में भी अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे।
अपना ही रिकॉर्ड तोड़े हैं। पहला रिकॉर्ड तो हरियाणा का सुधीर कुमार का था, 192 का रिकॉर्ड था, तो हमने नोएडा में 205 मार के रिकॉर्ड हमने अपना नाम किया। उसके बाद खेलो इंडिया में अपना ही रिकॉर्ड 206 के जी मार के नाम किया।
दिल्ली में आज दोपहर के समय धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मौसम साफ रहने का अनुमान है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र पांचाल। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज से शुरू हो गई है। बजट सत्र की पहले दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की दिल्ली परिवहन निगम की कार्यप्रणाली से संबंधित लंबित रिपोर्ट सदन पटल पर प्रस्तुत की। कैग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डीटीसी को वर्ष 2015 से 2022 के दौरान परिचालन पर 14,198 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि 2015-16 में बसों की संख्या 4,344 थी, जो 2022-23 में घटकर 3,937 हो गई है। वहीं इलेक्ट्रिक बसों की समय पर डिलीवरी नहीं करने के बाद भी बस संचालकों पर 29.86 करोड़ रुपए का जुर्माना नहीं लगाया गया। इसके अलावा नई बसों को खरीदने या फ्लीट को बढ़ाने के लिए पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। सदन पटल पर रखी गई लंबित कैग रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन निगम की तमाम वित्तीय एवं प्रशासनिक कुप्रबंधन का विस्तार से जिक्र किया गया है। विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि पिछले 8 सालों के दौरान डीटीसी के बेड़े में बसों की बढ़ोतरी की बजाय कमी दर्ज की गई। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि परिचालन की निर्धारित अवधि खत्म होने वाली बसों की संख्या 31 मार्च 2023 तक 17.44% से बढ़कर 44.96% यानी 1,770 हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सदन पटल पर वित्तीय समितियों के लिए निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव भी पेश किया। 1 अप्रैल 2025 से आरंभ होने वाली कार्य अवधि के लिए लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए 9-9 सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। इसके अतिरिक्त तो विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने कार्य मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री की तरफ से प्रस्तुत की गई डीटीसी की कैग रिपोर्ट पर विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अनुमति के बाद सदन में चर्चा हुई। चर्चा में दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अलावा भाजपा सदस्य हरीश खुराना, डॉ अनिल गोयल, तरविंदर सिंह मरवा, सतीश उपाध्याय, ओम प्रकाश वर्मा, अजय महावर आदि सदस्यों ने हिस्सा लिया। चर्चा के दौरान दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बजट प्रस्तुत करने से पहले आज दिल्ली सरकार की तरफ से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को सदन पटल पर पेश न करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि हमेशा दिल्ली का बजट पेश करने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाती है। नेता प्रतिपक्ष के इस वक्तव्य पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन को अवगत कराते हुए कहा कि अभी सभी विभागों का समग्र रूप से सर्वे और ऑडिट किया जा रहा है, जिसका काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार होगी और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुरानी सरकार के कामकाज पर दिल्ली सरकार सदन में श्वेत पत्र भी लेकर आएगी, जिसे सदन पटल पर रखा जाएगा। कैग रिपोर्ट को पेश करने से पहले विपक्ष ने सदन में कई बार शोर शराबा किया और 2 बार सदन की कार्यवाही से बहिर्गमन भी किया। विपक्ष के शोर शराबे और रवैये पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों का ये कदम सोची समझी रणनीति और जानबूझकर कार्यवाही में व्यवधान डालने का तरीका है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष की आपत्तियों के बीच सदन को अवगत कराया कि सभी सदस्यों को आईपैड दिए जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार पिछली आम आदमी पार्टी के कार्यकाल पर विधानसभा में श्वेत पत्र लाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध। और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।